श्रीमद्भागवतम 1.7.16 तदाशुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद् ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीव मुक्तैर् विशिखैरुपाहरे त्वा क्रम्य यद् स्नास्यसि तद् पुत्रा। सो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। सो हे देवी, ये अर्जुन बोल रहे हैं, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह संस्कार करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। किसके सिर पर खड़े होकर? अश्वत्थामा के, है ना। तात्पर्य, जो शत्रु, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक अस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फांसता है, वह आततायी है। ऐसा आततायी, चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथा कथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आततायी का शिर काटने की प्रतिज्ञा की तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आततायी था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन कुण्डले स्वयं रूपा कदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी कौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मंदिर में जो आने का सदाचार ये है कि अगर प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन छोड़ के भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का एक नाम है श्रुतेक्षित। श्रुतेक्षित का मतलब है कि कान से देखना। हम लोग भगवान को आँख से नहीं देख सकते, हम लोग भगवान को कान से देख सकते हैं। इसीलिए नवधा भक्ति में, नवधा भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, है ना। सो नवधा भक्ति जो है, नवधा भक्ति में सबसे पहले श्रवण शब्द आया है कि सुनो। अगर आप अच्छे से सुनोगे तो समझ में आएगा भगवान के दर्शन कैसे करने हैं, है ना। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब लेक्चर देते थे तो दर्शन खुलते थे तो लोग दर्शन के लिए दौड़ते थे। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे इनको नहीं पता दर्शन कैसे करते हैं। और बहुत सारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हैं वो दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन उनका एक शिष्य बहुत गंभीरता से उनके प्रवचन सुनता था और उनका नाम है शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी। प्रभुपाद। सो प्रभुपाद को अपने गुरु की वाणी पर बहुत श्रद्धा थी और बहुत गंभीरता से सुनते थे श्रील प्रभुपाद। और देखो जो भक्ति सिद्धांत है सरसी ठाकुर के और शिष्य जो कि आँख से दर्शन करना चाहते थे उनकी उपलब्धि देख लो और श्रील प्रभुपाद की उपलब्धि देख लो। सो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि भगवान के दर्शन करने की सही विधि क्या है, है ना। सो जब भी लेक्चर हो रहा हो तो लेक्चर सुनो और दर्शन आप फिर लेक्चर के बाद उठ के आप भगवान को आदर दे सकते हो। या अगर दर्शन करना ही है तो पहले आओ वक्ता से, वक्ता के आने से पहले आओ, भगवान के दर्शन करो और कीर्तन में भाग लो, वक्ता का इंतजार करो। ऐसा नहीं है कि वक्ता आपका इंतजार करेगा, नहीं, वो सदाचार नहीं है। शिष्टाचार यह है कि आप लोगों को वक्ता का इंतजार करना चाहिए, है ना। सो चलो, ये श्लोक में प्रसंग चल रहा है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और युद्ध खत्म हो गया था और भगवान कृष्ण को पता था कि अश्वत्थामा क्या करने वाला है। हाँ, तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को बोला कि आप विजय मनाइए, आपने युद्ध जीता है तो जो पराजित राजा है उसके शिविर में आज आप विश्राम करो। हाँ, सो जो पांचों पांडव थे वो दुर्योधन के शिविर में वो रात सोने के लिए चले गए थे, है ना। और जो द्रौपदी के पांचों पुत्र थे वो पांडवों के शिविर में सो रहे थे और अश्वत्थामा आया कृतवर्मा के साथ में और ये बच्चों को पकड़ लो प्लीज। सो आया और उसने अपनी तरफ से तो पांडवों का ही वध किया था, लेकिन वो पांडवों की जगह पांडवों के पांच पुत्र थे। सो उनका वध होने से अब जो द्रौपदी विलाप कर रही थी, क्या हो रहा है, कॉन्ग्रीगेशन में लेक्चर देना बड़ा मुश्किल है। सो द्रौपदी विलाप कर रही थी तो अर्जुन ने उनको सांत्वना देते हुए ये शब्द बोले कि जो आतताई है, जो जिसने इतना खराब कार्य किया है जिसने, और भगवद गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक में प्रभुपाद आतताई की परिभाषा दे रहे हैं। बोल रहे हैं 6 तरह के आतताई होते हैं, जो प्रभुपाद यहाँ पर भी उसको दोहरा रहे हैं कि जो जहर देने का प्रयास करता है, विष देता है जो, है ना, या जो संपत्ति हड़पने का प्रयास करता है, आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, कोई हथियार लेके मारने के लिए आता है, या जो आपकी जो पत्नी है उसको हड़पने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों को मारने में कुछ बुराई नहीं है, है ना। और अर्जुन भी यहाँ पर द्रौपदी को बहुत सांत्वना तो दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन की अगर आप अर्जुन की अगर आप बैकग्राउंड देखो, उसका अर्जुन का इतिहास देखो, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में खड़े होकर भी अर्जुन वह व्यक्ति है जो सोच रहा है कि मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो हम उस अर्जुन की बात कर रहे हैं और आप आगे जाके देखेंगे कि हालांकि अर्जुन अभी ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं जो आतताई है अश्वत्थामा मैं उसको मार ही डालूंगा मैं, लेकिन जब अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को तो भी उसको मारा नहीं, तो भी दोबारा से वो सब मिलके विचार करेंगे कि अश्वत्थामा के साथ क्या करना है। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो चार तरह के लोग हैं इस संसार में, अगर हम बात करें चार तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति है कंस जैसा व्यक्ति। कंस का क्या चरित्र है कि जब अपनी बहन का विवाह कर रहा था देवकी का वसुदेव के साथ में, तो भविष्यवाणी हुई कि भविष्य में जो देवकी का पुत्र है, आठवां पुत्र, वो आके तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, है ना। वो भविष्यवाणी सुन के ही, अभी बहुत समय है उसके अंदर अभी, लेकिन इतना इंद्रिय तृप्ति से लिप्त है, इतनी भोग वासना है कंस के अंदर कि भविष्य में कुछ घटना होगी, पता नहीं तुम उतने साल जीवित रहोगे भी या नहीं रहोगे, उसका भी कुछ ठिकाना नहीं है, लेकिन क्योंकि भविष्य में कुछ घटना हो सकती है तो पहले ही अपनी जो बहन और जो दामाद है उसको कारागार में डाल दिया। और आठवां पुत्र कभी आएगा, हो सकता है कुछ गलती ना हो गई हो भविष्यवाणी में, तो पहले के छह पुत्र भी मार दिए, है ना। और सोच रहा था सातवें पुत्र का गर्भपात हो गया, हालांकि वो बलराम जी थे, वो देवकी जी से शिफ्ट होकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित हो गए थे जाकर, है ना। तो एक वो लोग हैं जो कि सोच रहे हैं कि किसी तरह से मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं, मेरी इंद्रिय तृप्ति में कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए, है ना। सो बच्चे क्या हो गया। दूसरे तरह के लोग हैं इंद्र जैसे लोग। जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया था, कोई था नहीं पीछे रक्षा करने के लिए, तो सारे देवताओं ने चढ़ाई की, राक्षसों को मार दिया, भगा दिया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे एक राजा एक राज्य के सैनिक दूसरे राज्य पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो किस पे जुल्म उठाते हैं, वो किस पे जुल्म उठाते हैं, स्त्रियों पे जुल्म उठाते हैं, है ना। जब पाकिस्तान वाले लोगों ने वो कबायली भेजे थे हिंदुस्तान पे आक्रमण करने के लिए, तो जो सीमा लगती है, जो जम्मू कश्मीर वगैरह जो है, वहाँ से वो कबायली आतताई आए और उन्होंने जो भी वहाँ पर स्त्रियाँ थी, वो स्त्रियों के साथ उन्होंने बहुत अनाचार किया। अब इसमें आश्चर्य की बात यह है कि हिंदू पहले डरे हुए थे कि कुछ होने वाला है, तो वो पहले ही वहाँ से पलायन कर गए थे बहुत संख्या में, लेकिन मुसलमान सोच रहे थे कि हमारे भाई आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो वो वहीं पर रुके रहे। तो जब ये कबायली आए वहाँ से पाकिस्तान से, तो वो हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं कर रहे, उनको तो सामने एक स्त्री चाहिए भूख मिटाने के लिए, तो उन्होंने उन्हीं पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, मुसलमान स्त्रियों पर ही। तो मुसलमानों ने बोला, अरे भैया क्या कर रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। वो बोल रहे हैं, भैया हमें तो भूख लगी हुई है, हमें तो भूख मिटानी है, जो सामने आएगा हम तो यूज करेंगे, है ना। तो जब कोई भी राज्य दूसरे राज पर विजय प्राप्त करता है, तो सबसे पहले वहाँ की धन संपत्ति लूटेगा और स्त्रियों जो है उनको अनाचार करेगा, है ना। तो जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की, हिरण्यकशिपु था नहीं वहाँ पर, तो क्या किया कि इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी को पकड़ लिया, उसको बंदी बना लिया, मारने के लिए लेके जा रहा था। बंदी बनाऊंगा क्योंकि गर्भवती है इसकी स्त्री, एक असुर का पुत्र है तो असुर ही होगा, और जब ये पैदा होगा तो पैदा होते ही बच्चे को मार दूंगा। क्यों मार दूंगा? ताकि मैं निष्कंटक राज कर सकूं। लेकिन नारद मुनि आए वहां पर, रास्ते में नारद मुनि मिल गए, उन्होंने बोला इसको छोड़ दो, इसके गर्भ में जो ये स्त्री है इसके गर्भ में बहुत ही बड़ा वैष्णव। तो क्योंकि नारद मुनि एक बहुत ही महान साधु हैं, तो उनके कहने पर इंद्र ने उसको छोड़ दिया। तो एक दूसरी तरह का व्यक्ति है ना। हालांकि वसुदेव ने कंस को बहुत समझाया था, उसको ये भय भी दिखाया था कि जो तुम कर रहे हो तुम्हें कीर्ति नहीं मिलेगी ऐसा करने से, अपनी बहन और जो दामाद है उसको बंदी बनाने से किसको कीर्ति मिलेगी, शरीर है तो मृत्यु होगी, मृत्यु से क्यों घबरा रहे हो, है ना। तो बहुत उसको समझाने की कोशिश की, नहीं माना, फिर भी उनको जेल में डाल लिया। तो वो एक व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति इंद्र है। इंद्र जो है वो ये अब हालांकि मारना चाह रहा है, लेकिन गुरु ने समझाया तो छोड़ दिया, है ना, गुरु की बात पे भरोसा किया। अब अर्जुन तीसरा व्यक्ति है। अर्जुन तीसरी तरह का व्यक्ति है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया और युद्ध के मैदान में खड़ा होकर भी सोच रहा है कि मारूं या नहीं मारूं, क्या करना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है। और उन्होंने, अर्जुन ने बोला भगवान कृष्ण को कि आप मुझे निश्चित करके बताइए, आप मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। सो भगवान ने उसको समझाया और उसको बोला कि आप क्षत्रियो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि किसी को नहीं मारना, अहिंसा का मतलब है कि आप अपने जो आपका कर्तव्य है आप उसका पालन करो, अगर सामने आतताई है तो आप उसका वध करना उचित है। तो भगवान के समझाने पर अर्जुन ने युद्ध किया, है ना। सो चलो एक बार पूरी पृथ्वी जो है वो साफ कर दी भगवान ने, सारे असुर मार दिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, सारे दुष्टों का विनाश कर दिया, चलो बात खत्म हो गई। अब 5000 साल बीत गए इस बात को, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, 5000 साल बीत गए। अब भगवान ने देखा पृथ्वी पर क्या हो रहा है, तो उन्होंने क्या देखा, दोबारा से असुर बढ़ गए हैं, लेकिन अभी असुरों का जो रूप रंग है बदल गया अभी, है ना। अभी असुर आपके मेरे जैसे दिखते हैं, अभी वो ऐसे असुर नहीं है हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे जो पृथ्वी से फुटबॉल खेलते थे, पता है ना आपको, ठोकर मारते थे पृथ्वी को, फुटबॉल की तरह खेलते थे, एक ठोकर मारे हिरण्यकशिपु ने पृथ्वी रसातल में पहुंच गई, तो भगवान ने बड़ा रूप लिया और उसको बाहर निकाल के लेके आया, है ना। अभी वैसे असुर नहीं है अभी, हाँ, धेनुकासुर, अघासुर, हाँ, अघासुर मुंह खोलता था तो एक जबड़ा जमीन पर और दूसरा आसमान में, दिखता नहीं था कि कितना मुंह की लंबाई छोड़ गई। अभी असुर बदल गया, आपके मेरे जैसे बन गए अभी, है ना। तो असुर कौन है? और प्रभुपाद भगवद गीता में बता रहे हैं कि दो ही तरह के लोग हैं इस संसार में, है ना। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में 4 लाख तरह के मनुष्य हैं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो जो 4 लाख तरह के मनुष्य हैं उनको 2 भागों में डाल सकते हो आप, एक सुर और एक असुर, बस ये 2 कैटेगरी हैं, 2 वर्ग हैं बस। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो सुर है, और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, वो असुर है ना। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि इतने असुर बढ़ गए हैं, रूप बदल गया है, और लेकिन इतनी ईर्ष्या है मन में मेरे प्रति, मेरे भक्तों के प्रति। तो मैंने तो वचन लिया है, मैंने तो वचन लिया कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम्, दुष्टों का विनाश कर दूंगा, मेरा वचन है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये मेरा वचन है। लेकिन अगर मैं विनाशाय च दुष्कृतम् करता हूँ, अगर आज कलयुग में आके तो पूरी पृथ्वी के लोगों का नाश करना पड़ेगा, भक्त है ही नहीं, है ना। तो ये सोचकर कि अभी विनाशाय च दुष्कृतम् कैसे करेंगे, भगवान ने चौथी तरह के लोगों को पृथ्वी पर भेजा, वैष्णवों को भेजा भगवान ने, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, शिवास पंडित, ये सारे भक्तों को भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर भेजा कि आप जाके जो है पृथ्वी पर आप लोगों का मन बदलो, असुरों को सुर बनाओ, जो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं उनको भगवान की भक्ति में लगाओ। लेकिन लोग ऐसे हैं कलयुग के कि जो भक्त उनके कल्याण के लिए जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को बताने के लिए कि आप भगवान की भक्ति करो, आमारे किनिया लो बोलो गौर हरि, आप भगवान का नाम लो और भगवान का नाम लेके आप मुझे खरीद लो, बच्चे क्या प्रॉब्लम है, आप चुप करके बैठो प्लीज, भगवान का नाम लो और मुझे खरीद लो और मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगा। ऐसे भक्तों के प्रति भी इस कलयुग के लोग इतने ईर्ष्यालु हैं कि उन्हीं को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे नवद्वीप में एक व्यक्ति था, उसको शिवास पंडित से बहुत ईर्ष्या थी कि बहुत उसके घर में ही चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, शिवास पंडित के घर के बाहर काली पूजा का सामान रख दिया ताकि लोग ये समझे कि ये पखंडी है। तो शिवास पंडित ने क्या किया, शिवास पंडित ने बोला कि हाँ, उसने लोगों को इकट्ठा किया, उसने बोला देखो मैं वास्तव में काली का भक्त, मैं अच्छा भक्त नहीं हूं, मैं भगवान की अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा। तो सब लोगों ने बोला कि ये किसी और का काम है, आप में कुछ कमी नहीं है। तो हालांकि किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की भक्त को, लेकिन भक्त ने उसका बुरा नहीं माना, है ना। इसी तरह से जब नित्यानंद प्रभु गए प्रचार के लिए, तो दो बहुत दुष्ट ब्राह्मण थे, ब्रह्मबंधु, वास्तव में ब्राह्मण के पुत्र तो थे वो, लेकिन ब्राह्मण का कुछ गुण नहीं था। और ब्राह्मण के गुण क्या है, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि भगवान ब्राह्मण के गुण क्या है, शम दमो तप शौचम शांतिर आर्वजम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचम, कि जो ब्राह्मणों के जो गुण है वो है कि वो धर्म का पालन करेंगे, शांत रहेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई किसी से शत्रुता नहीं करेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, सच बोलेंगे, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जो है वो जन्म से निर्धारित नहीं होगा, ब्राह्मण कर्म से निर्धारित होगा। और भगवान भगवद्गीता में कह भी रहे हैं जन चतुर्वया मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, कि मैंने चार तरह के वर्ग बनाए हैं, मैंने चार वर्ण बनाए हैं मैंने, लेकिन वो जाति पर आधारित नहीं है, वो कर्म और स्वभाव पर आधारित है। इसीलिए भागवतम के इस श्लोक में, ये जो 16वां श्लोक है, इसमें आप देखो अर्जुन ने, हालांकि अश्वत्थामा किसका पुत्र है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्या शब्द का प्रयोग किया है? ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग किया, कि वो ब्राह्मण का पुत्र तो है लेकिन उसमें ब्राह्मणों वाले गुण नहीं है। तो प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक जज का बेटा जो है वो जज नहीं हो सकता, वो जज कहलाने का अधिकार तब प्राप्त करेगा जब वो जज का इम्तिहान पास कर लेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, है ना? आप ऐसा थोड़े ना कि आपको सपोज बुखार हो गया, चिकनगुनिया, आप गए डॉक्टर के पास तो घंटी बजाई उसके घर की, तो उसके बेटे ने दरवाजा खोला तो आपने पूछा डॉक्टर साहब है? नहीं डॉक्टर साहब तो नहीं है, पापा तो नहीं है। अच्छा पापा नहीं है, चलो तुम ही दवाई दे दो, तुम भी तो डॉक्टर के बेटे हो, हाँ तुम भी तो डॉक्टर के बेटे हो, दवाई दे दो। ऐसा करेंगे क्या हम? हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको? आप इसको लेके पीछे बैठ जाओ ना, आप बेटा पीछे बैठ जाओ आप। तो अगर डॉक्टर के बेटे से हम दवाई नहीं लेंगे जब तक कि हम पूछ नहीं लें भैया डॉक्टर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कहाँ से पढ़ी है। लोग चेक करते हैं आजकल कि MD है, MBBS है, या चलो इसने MD कर रखी है तो हार्ट में कर रखी है, मेडिसिन में कर रखी है, डायबिटीज में कर रखी है, किस में कर रखी है। नहीं, डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास आप हार्ट का इलाज करवाने थोड़ी ना जाओगे, हार्ट का इलाज कराने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे जो हार्ट का डॉक्टर है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार डॉक्टर के बेटे को हम ऑटोमेटिकली डॉक्टर नहीं मान लेंगे, जज के बेटे को जज नहीं मान लेंगे, उसी प्रकार ब्राह्मण के बेटे को हम ऑटोमेटिकली ब्राह्मण नहीं मान लेंगे। उसमें गुण होने चाहिए, उसका कार्य ऐसा होना चाहिए। जब तक उसमें उसका स्वभाव और कार्य ब्राह्मणों वाला नहीं होगा तब तक उसको हम ब्राह्मण नहीं मानेंगे, उसको हम ब्रह्म बंधु मानेंगे। इसलिए अर्जुन यहाँ पर अश्वत्थामा के लिए ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो दो ब्रह्म बंधु थे, जगाई और मधाई, तो वो गए, उनका सामना हुआ नित्यानंद प्रभु से। तो नित्यानंद प्रभु सभी को बोल रहे थे कि आप भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो जगाई मधाई सामने आए तो नित्यानंद प्रभु ने उनको भी भगवान का नाम जपने के लिए बोला, है ना? और जगाई मधाई ने क्या किया, मधाई ने क्या किया, वहां पे मटका रखा था उठा के नित्यानंद प्रभु के सिर पर जोर से देकर मारा, उनके एकदम जमीन पे गिर गए और उनके सिर से खून की धारा बहनी शुरू हो गई। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला बहुत गुस्से हो गए एकदम से, है ना, और फौरन वहां पर पहुंचे और सुदर्शन चक्र का आह्वान कर लिया जगाई मधाई को मारने के लिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, उनको गुस्सा कैसे आ गया, सहन करना चाहिए था। नहीं, चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, एक साधु है, सन्यासी है, उनको तो शांति का अनुशीलन करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हो गया, चलो, बात को दबाना चाहिए था, वो मारने के लिए क्यों उतारू हो गए। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में, कि एक जो भक्त है वो अपने पर हुए अत्याचार को सहन करता है, लेकिन अगर किसी दूसरे भक्त पर अत्याचार हो तो उसके लिए कभी सहन नहीं करता, माफ नहीं करता, है ना? अगर कोई चैतन्य महाप्रभु पर लांछन लगाता, और लोगों ने लगाए भी थे, एक बार चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में बैठे हुए थे, संन्यास लेने से पहले की बात है, गया तीर्थ से चैतन्य महाप्रभु आ चुके थे, संकीर्तन आंदोलन चल रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु बैठे थे और गोपी भाव में थे, और उस गोपी भाव में थे कि भगवान कृष्ण छोड़ के जा चुके हैं वृंदावन से, हाँ मथुरा जा चुके हैं, पीछे से वो सारी गोपियाँ परेशान हैं। और क्या है, गोपियाँ आपस में भगवान कृष्ण की बुराई कर रही हैं, छोड़ के चले गए। हाँ वहाँ पर जाकर मथुरा में नई उनको जो है स्त्रियाँ मिल गई होंगी। हाँ हम कृष्ण का मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। तो इस भाव में चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की जो है भगवान कृष्ण को गाली दे रहे थे और बहुत ही संतप्त थे, बहुत बहुत विरह महसूस कर रहे थे। तो वहां पर एक ब्राह्मण शिष्य आया और चैतन्य महाप्रभु को बोल रहा था कि आप कृष्ण को, कृष्ण का नाम लो, परेशान क्यों हो रहे हो, कृष्ण का नाम लो। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम गुस्से में आ गए, उन्होंने बोला उस कृष्ण का नाम जो छोड़ के चला गया वृंदावन और उसको मारने के लिए भागे। तो वो ब्राह्मण भाग कर गया अपने साथियों के पास और मिलके उन्होंने प्लान बनाया कि अगर जो है निमाई पंडित, उस समय चैतन्य महाप्रभु का नाम था निमाई पंडित, अगर निमाई पंडित ने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम उनको पीटेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि दोबारा लोग उनके बारे में ऐसा नहीं सोचे क्योंकि उस समय सन्यासी का बहुत सम्मान होता था, चैतन्य महाप्रभु ने घर ही छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। बजाय उनको कुछ डांटने के चैतन्य महाप्रभु ने खुद सारे सुखों का परित्याग कर दिया और सन्यास ग्रहण कर। तो जो भक्त हैं वो अपने ऊपर कुछ लांछन लगेगा या अत्याचार होगा उसको सहन करेंगे, लेकिन किसी दूसरे भक्त पर अगर कुछ अत्याचार होगा तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए गुस्से में थे कि उनके सबसे प्रिय भक्त स्वयं बलराम है नित्यानंद प्रभु, उनको घायल कर दिया, जख्मी कर दिया। अब नित्यानंद प्रभु का क्या वहां पर व्यवहार रहा? सो नित्यानंद प्रभु जो है वो चौथे तरह के व्यक्ति हैं। तो हमने पहले व्यक्ति की किसकी बात की थी, किसकी बात की थी, कंस की, जो भविष्य में कभी कुछ होगा तो उसको सोच के पहले ही दूसरे पे अत्याचार शुरू कर रहा है। और दूसरी हमने बात की थी इंद्र की, कि ये इसके गर्भ में बच्चा है, पैदा होगा तो पैदा होते ही इसको मार दूंगा, लेकिन गुरु ने बोला तो छोड़ दिया, कंस को समझाने पर भी नहीं छोड़ा। और तीसरे व्यक्ति की हमने बात की थी अर्जुन की, है ना, कि वो सोच रहा है युद्ध के मैदान में खड़े होके इतने कष्ट से फिर भी सोच रहा है कि मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। हाँ अब हम चौथे तरह के व्यक्ति पे आ रहे हैं, नित्यानंद प्रभु। सो नित्यानंद प्रभु घायल जमीन पर गिरे हुए हैं, सिर से खून की धारा बह रही है और चैतन्य महाप्रभु जगाई बधाई दोनों ब्रह्म बंधुओं को मारने के लिए उद्यत हैं, मारने के लिए एकदम तैयार हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, एकदम उठ के खड़े हुए और चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए कि आप प्लीज इनको नहीं मारो, ये बहुत अच्छी गलती है ना, आप अगर इनको मारोगे तो जो आपका, आप कलयुग में अवतरित हुए हो लोगों पर दया करने के लिए, आप दया दयालु अवतार हो, आप मारने के लिए नहीं आए हो कलयुग में। अगर दुष्टों को मारने के लिए अगर हम शुरू होंगे तो पूरी पृथ्वी के लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा है। सो आप प्लीज, आप जगाई बधाई को मारिए मत और इन पर कृपा करिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तब तक कृपा नहीं करूंगा जब तक जगाई मधाई तुम्हारी शरण नहीं लेंगे। ये क्या हो रहा है, कहने पर भी फोन आप लोग स्विच ऑफ नहीं कर रहे हो, क्या मतलब, कितना दुर्भाग्य है, नहीं पूरा लेक्चर डिस्टर्ब कर दिया, अपना फोन स्विच ऑफ नहीं कर पाए आप लोग, बहुत अफसोस की बात है। सो क्या क्या बोल रहे थे हम, हाँ, सो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अगर तुम नित्यानंद प्रभु की, जब तक ये लोग शरण नहीं लेंगे, इनको मैं माफ नहीं करूंगा। तो जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु की शरण ली, उनका आश्रय लिया, तो उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है? हमें पहली सीख तो ये मिल रही है कि बहुत ही सहिष्णु रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी है, हाँ, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कि अगर सदा हरि, अगर हमेशा भगवान का भजन करना है, तो तिनके से भी ज्यादा अपने आप को नीच मानना पड़ेगा, घास से भी ज्यादा सहनशील होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होना पड़ेगा। वृक्ष को पत्थर मारो, वापस पत्थर नहीं मारेगा। जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक सम्मान बिना अपेक्षा किए हुए दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, तब तक कभी भी कीर्तनीय सदाहरि नहीं कर पाएंगे। सो पहली बात यह है कि बहुत विनम्र रहना चाहिए, है ना, हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहिए और खुद सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये हमें अपने मन में निश्चित कर लेना चाहिए कि हम कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है, जो व्यास आसन पे बैठा है, आप नीचे बैठे हो सारे, और जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम सब कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि अगर कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते तो इस पृथ्वी पर हम लोग नहीं होते। तो हम सब लोग कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। अभी हमारे मन में भोग वासना, जब तक हमारे मन में लेश मात्र भी भोग वासना है, इसका मतलब हम कृष्ण की जगह खुद एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये जो भावना है, ये कृष्ण से ईर्ष्या की भावना है। तो क्योंकि हम लोग भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हम भगवान कृष्ण की सीधे शरण नहीं ले सकते। हमें पहले नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी पड़ेगी। अगर हम नित्यानंद प्रभु की शरण लेंगे तो हम भगवान कृष्ण की शरण ले सकते हैं। और नित्यानंद के प्रतिनिधि कौन है? अभी अभी नित्यानंद के प्रतिनिधि है श्रील प्रभुपाद। और कौन है नित्यानंद के प्रतिनिधि? श्रील प्रभुपाद के शिष्य। तो अगर हमें भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए, तो हमें श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की शरण लेनी पड़ेगी, उनको अपना गुरु बनाना पड़ेगा। जब तक हम गुरु की शरण नहीं लेंगे, जब तक हम उनके चरण रज अपने मस्तक पर धारण नहीं करेंगे, जब तक हम दीक्षित नहीं होंगे, तब तक हम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सब बहुत गंभीरता से दीक्षा के बारे में सोचो। आप सब चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का हिस्सा बनने की कोशिश करो। आप सबको ये उत्कंठा होनी चाहिए, ये लालच होना चाहिए, बहुत ही प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हम तुरंत हम चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, जो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं, उनकी हम शरण लें, उनके चरणों का आश्रय प्राप्त करें। ठीक है, तब यहीं पे इसको विराम देते हैं। अगर आपका किसी का कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सो वेल, किसी का प्रश्न